की
बहुत काफी है। सूर्य के धूप की इतनी अपनी गर्मी पड़ती है कि इसको बर्दाश्त कर ले तो बहुत है, लेकिन अब एक तपस्या है। वहां तो किसी को तपस्या करनी हो तो वो जाना चाहिए। जितनी हम लोग आए हैं यहाँ सूर्य की ईश्वर की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए, मन इंद्रियों का संयम करने के लिए और दुखियों की सेवा करने के लिए, ये हम लोगों से बनती नहीं है। ये हम लोगों के वहां अपनी कमी है। आज हमारे पुस्तकों में तपस्वियों के नाम से आते हैं, यदक्षरण रोग विदोग रमती विसंति यदि यो भीतर आगा यदि चंतो ब्रह्मचर्य करंती तत्व पवन संग्रह प्रलक्ष।
और समर्थनों में उपनिषदों में या कहीं जो उल्लेख आता है हमारे शास्त्रों में, श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों में, वो ऐसे आता है जैसे 12 महीना जो होते हैं जहां तपस्वियों के धर्म आए हैं, तपस्वी माने बाण प्रस्थी, उनके लिए ये आया है कि उनको वन में वास करना चाहिए, शहर में नहीं, पहाड़ों में, गुहाओं में, वन में, गंगा के किनारे, ऐसे स्थानों में वास करना चाहिए या और को जलाशय के किनारे, और किस प्रकार से अपना समय बिताना चाहिए, और वो अकेला रहे कि स्त्री के साथ रहे, तो ये बात आती है कि वो अकेला भी वन के मार रह करके अपना तपस्या कर सकता है और अपने धर्मपत्नी के साथ में भी रह सकता है। किंतु धर्मपत्नी और वो दोनों साथ में रहे तो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करें, जैसे बहन भाई रहते हैं इस प्रकार के भाव से रहे। रात्रि के सोने के समय में बीच में कोई प्रकार से ऐसी एक वस्तु आड़ रख ले कि एक दूसरे किसी को स्पर्श नहीं कर सके, इस प्रकार से स्त्री साथ में रह सकती है। स्त्री की इच्छा हो तो घर में रहे पुत्रों के पास, और उसकी तपस्या करने की इच्छा हो तो पति के साथ में भी रह सकती है। उनको हर से पैदा हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। वन में जो फल है, मूल कंद जो पैदा हुआ है, उसी से अपना निर्वाह करना चाहिए। और 4 महीना जो है, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जो संयुक्त की ग्रीष्म काल जो है, इस 4 महीनों के बीच के ना शरीर के चमड़े को उल्टा बनाने के वास्ते तितीक्षा जो है उसको आपने तितीक्षा की वृद्धि करनी है, इसलिए चारों तरफ में 4 अग्नि जला करके, चारों तरफ में धूनी जला करके और बीच के बीच में बैठ करके ऊपर से सूर्य की तपस्या को बर्दाश्त करे। जो कड़ी धूप है दोपहर के समय में, जैसे 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच की दोपहर की जो कड़ी धूप है, उस धूप को बर्दाश्त करे। बाकी 4 महीना जो वर्षा ऋतु है, श्रावण भादो आषाढ़ कार्तिक या समझो कि जो वर्षा ऋतु के श्रावण भादो के महीने वर्षा ऋतु है, एक महीने पछाड़ी को एक अगाड़ी को यूं भी ले सके है, किंतु 4 महीना या समझो कि 15 दिन आषाढ़ का इधर में ले लिया, उधर के बीच के वहां 15 दिन कार्तिक का ले लिया, श्रावण भादो आषाढ़ से लेना चाहिए, बाकी एक महीनों आगे पत्र से ले सके है। उस 4 महीना के बीच के वहां पहाड़ की चोटी के ऊपर ऊंचे स्थान में बैठने चाहिए और वर्षा को शरण करना चाहिए, अपने मस्तक के ऊपर 4 महीना वर्षा को शरण करे। 4 महीना जो शीतकाल का है, समझो होली से दिवाली तक, या यूं समझो कि 15 दिन कार्तिक का ले लिया और 15 दिन इधर में फागुन का छोड़ दिया, तो 4 महीना जो खूब सर्दी पड़ती है, उस समय में 4 महीनों के बीच के ना कोई तालाब में या गंगा में या नदी के ना समझो कि जल के बीच के ना के ऊपर का हिस्सा बाहर में रहे,
और यहां तक जल के बीच के में रहना चाहिए, ठंडे जल के बीच के। यदि कहो कि ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे, ये भूल धारणा है। यदि ऐसी बात शास्त्रों के बीच के में लिखी है और मर जाते तो मरने के लिए आदमी कहां से आते, इससे शरीर का चमड़ा एकदम पुरता हो जाता है। फिर आगे जाकर संन्यास आश्रम के बीच में उसको कोई दिक्कत नहीं आती, वही अच्छा पक्का संन्यास होता है। आजकल का जो एक प्रकार से संन्यास आश्रम है तो पहले के जमाने की मत नहीं है। इस प्रकार का न तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, न गृहस्थाश्रम और न दान परिषद में संन्यास, चारों में अभी कुछ है तो गृहस्थाश्रम एक उसे फिर भी ठीक ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम जो है वो आजकल देखने में कम आते हैं। यूं तो ब्रह्मचर्य आश्रम समझो कि गुरुकुल ऋषिकुल हरिद्वार के बीच के वहां चूरू में लक्ष्मणगढ़ में कई जगह खुले हुए हैं, किंतु जो शास्त्र की जो मर्यादा है उसके मुताबिक नहीं है। इसी प्रकार से थी समझो कि इस समय के लिए ट्रेनिंग है कि घोर कली काल बरकर है। इन सब बातों को ख्याल में रख करके आपको यह बात कही कि असली जो बाण प्रस्थ आश्रम है उसका तो दर्शन भी होना मुश्किल है। तो यही एक प्रकार से नकली बाण प्रस्थ आश्रम है कि गृहस्थ में रह करके के और वन में रहकर और तपस्या करना, ईश्वर की भक्ति करना और जप ध्यान और समझो कि मन और इंद्रियों को बस में करके अपने धर्म का पालन करना, ये कुछ उसका अंश है। कभी कभी जंगल के बीच के वहां सत्संग आगे होया करता था, किंतु इस साल के वहां ऐसा मौका कम पड़ा है। और फिर भी ऐसा विचार किया जा रहा है कि खूब अपने जंगल की सत्संग करने से ही यहां का जो संघ है वो बहुत अच्छा है, किंतु ये एक प्रकार से आराम का है, ये एक समझो कि अमीर आदमियों का है। केवल सत्संग करने से ही काम नहीं चल सकता, सत्संग की बातों को सुनकर के उसके अनुसार उसको काम में लाना चाहिए, तभी काम चल सकता है। हम लोग जो बढ़ता है उनको तो एक प्रकार से व्यसन पड़ गया व्याख्यान देने का, और सुनने वाले जो श्रोता है उनको आदत पड़ गई, एक व्यसन पड़ गया सुनने का। तो इस प्रकार से कहीं और सुनने से काम नहीं चल सकता। वक्ता भी ऐसा होना चाहिए कि खुद उसका पालन करने वाला हो तो भी उसका असर पड़ सकता है, और सुनने वाला भी ऐसा होना चाहिए कि सुनकर उसको काम में जाए। ये हम लोगों के वहां दोनों ही कमी है, वक्ताओं में और श्रोताओं में। उसी का ये कारण है कि जो विशेष लाभ वह नहीं और नहीं हो रहा है। नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई इतने समय की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत शीघ्र ये तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। विष्णु पुराण के छठे अंश की दूसरी अध्याय के बीच के वहां लिखा है, वेदव्यास जी ऋषियों के वहां कह रहे हैं, वेदव्यास जी स्नान करने के समय में कह रहे थे कि कलयुग को धन है, कलयुग को धन है, कलयुग को धन है। ऋषियों ने पूछा कि महाराज आपने कलयुग को धन्यवाद दिया, इसका हेतु हमारे समय में नहीं आया, हम लोग आपसे कुछ पूछने के लिए आए थे, किंतु पहले यही पूछना चाहते हैं कि कलयुग को आपने कहा धन्य है, धन्य इसका क्या मतलब है। तो वे कहते हैं कि सतयुग में 10 वर्ष साधन करने से जो कार्य की सिद्धि हुआ करती थी त्रेता के बीच के मां 1 वर्ष में होने लगी और द्वापर के बीच के मां 1 महीने में, किंतु आज कलयुग के बीच के मां 24 घंटा के में हो सकती है, 8 पैर के में कार्य की सिद्धि हो सकती है। ये बात एक प्रकार से थी युक्ति से समझ भी आती है। ध्रुव जी ने 5.5 महीना तय तपस्या करी तो भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। हमारी समझ में आज उस प्रकार एक दिन रात यदि कोई करे तो उसको भगवान मिल सकते हैं। संभव है कि एक दिन रात करना भी नहीं पड़ेगा। गुरु जी ने अंत समय में किस प्रकार की तपस्या करी ये आप लोग जानते होंगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उन्होंने जप किया और चतुर्भुज मूर्ति का ध्यान किया। सशंख चक्रम सिगरेट कुंडलम सपीत वस्त्र सरसी वृक्षम सहार लक्ष चतुर्षा चतुर्भुजम। वहां बहुत से श्लोक है और उनका भाव यही है कि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है शंख चक्र गदा पद्म सहित इस रोग में तो दो ही है किंतु एक प्रकार से उनका विस्तार है। भागवत के ना तो उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म सहित भगवान के स्वरूप को बतलाया है। बहुत से लोगों का उदाहरण देकर के टीवी के ऊपर एक दिन ईश्वरी प्रसाद जी ने विस्तार से बहुत से लोग बोल करके वर्णन किया था और समय प्रेमी के ऊपर में जब विष्णु का ध्यान बतलाया करता हूँ तो विस्तार से बतलाया करता हूँ। अब तो उसका केवल संकेत ही कराया जाता है कि भगवान का कैसा स्वरूप है। शंख चक्र और गदा पद्म के सहित है, पीताम्बर पहरे हुए, मस्तक के ऊपर मुकुट है और कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, जिनके नेत्र कमल के पत्ते के समान आकृति वाले और कमल के पुष्प के माफक खिले हुए हैं। बकस्तर जो है छाती जो है हृदय उसके ऊपर चंद्रहार पड़े हुए कोष नहीं धारण कर रखिए और श्री जी का सो चिन्ह है। ऐसे चतुर्भुज भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। भगवान का जो स्वरूप अब विस्तार के साथ बतलाया गया है तो भगवान विष्णु का ध्यान और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जप और एक पैर से खड़ा रहना रात्रि के बीच के मां शयन का काम नहीं। उन्होंने आंख में भोजन का भी त्याग कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया, श्वास लेना भी छोड़ दिया, फिर टट्टी पेशाब की तो बात ही क्या है, उसका तो त्याग था ही। न पेशाब करना, न टट्टी जाना, न खाना, न पीना, न सोना, कुछ भी नहीं करना। इस प्रकार से चिन्ह ने बड़ी घोर तपस्या की। उस तप के बल से थी सारी दुनिया के बीच के मां सुनने की सब दुनिया उस तप से तपने लगी। सब लोगों ने भगवान विष्णु से कहा कि महाराज उसको किसी भी प्रकार से खुश करके शांत करो। भारी भारी आपत्तियां आकर के प्राप्त हुई किंतु वे अपने सिद्धांत से डिगे नहीं। आसुर लोग जो है वे आकर के नाना प्रकार के उपद्रव करने लगे किंतु उन्हें ये निश्चय कर लिया कि एक चल दिया तो मर जाएंगे, क्या भगवान का दर्शन ही करना, या तो भगवान आकर दर्शन देंगे और नहीं तो उस प्रकार से उसके नाम के ऊपर अपने प्राणों का हम त्याग ही कर देंगे। ये उनका निश्चय था। इतना ही नहीं, उस आसुरी ने अपने माया से अपने उसकी माता का रूप धारण करके ध्रुव की माता का रूप धारण करके और वो माता की बोली में माता के रूप में आकर के ध्रुव को कह रही, बेटा ध्रुव मैं तेरी माँ हूं, मेरी आज्ञा को मान करके इस तपस्या को तुम छोड़ दो। ध्रुव जी ने किसी की भी परवाह नहीं की, वे अपने सिद्धांत के मां अटल डटे रहे। जैसे ध्रुव तारा अटल है इसी प्रकार उनकी भी तपस्या अटल डटे रही। भगवान को बाध्य होकर के आना पड़ा और दर्शन देकर करके उसका उद्धार किया। दर्शन पा करके ध्रुव खुश हो गया और भगवान कहने लगे कि ध्रुव जो तेरी इच्छा से तुम वरदान हो। ध्रुव ने कहा प्रभु मैं कामना को लेकर के आपकी भक्ति में लगा था किंतु प्रभु अब मेरे हृदय में कोई प्रकार की कामना नहीं रही, इसलिए अब मैं कछु भी नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि ध्रुव यदि कोई मेरी सहकाम भाव से भक्ति करेगा और मेरा दर्शन पा करके वो निष्काम बन जाएगा तो फिर सहकामी पुरुष मेरी भक्ति नहीं करेंगे, इसलिए तेरी जो कामना थी उसकी पूर्ति मुझको अवश्य ही करनी है। और इसके अलावा और जो तुम्हारी इच्छा हो तो तुम वरदान मानो। गुरु जी ने कहा प्रभु जब आपकी कृपा है आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं बालक हूं, मुझको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, स्मृति स्मृति इतिहास पुराणों का कुछ ज्ञान नहीं, बच्चा ही हूं, कभी पढ़ाई करी नहीं, क्योंकि उस वक्त में गुरु जी की 5 साल की उम्र थी। मैं यही चाहता हूं कि सारे शास्त्रों का ज्ञान मुझको बिना पढ़े आ जाए। भगवान ने अपना संघ छुड़ा दिया, उसके दाल के अपना संघ छुड़ा दिया, उसी क्षण के बीच के मां भगवान की कृपा से उनको सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। फिर भगवान की स्तुति करने लगे, स्तुति से भगवान खुश होकर के बोले धन जो तुम्हारी इच्छा से तुम वरदान मांगो, वो प्रभु मेरे को कोई बात की भी इच्छा नहीं है। तो भगवान ने अपनी इच्छा से उनको वो से वरदान दिए कि राज तो तुम्हारे को मिलेगा और उसके बाद में देव पात होने के बाद में जो ध्रुव जो तारा है जब तक संसार रहेगी तब तक उसे के मां तुम एक प्रकार से उसके रूप में उसका मालिक होकर के उसका अधिष्ठा देवता बनकर के तुम वहां से स्वर्ण के वास्ते रहोगे और मुक्ति को आकर के मुंह है। भगवान ने बहुत से वरदान दिए, ये तो शास्त्र की बात। और लोकोक्ति मैं आपको कहता हूं कि मैंने वो बात कहीं देखी तो नहीं, किंतु एक पुरानी बात चली आ रही है उसको सुनकर के मैं आपको कह रहा हूं। वो बात यह है, भगवान ने फिर विशेष आग्रह किया कि ध्रुव तेरी इच्छा को तुम वरदान दो, वरदान लेकर के मेरे को प्रसन्न का होती है, मेरे संतोष के लिए तुम्हारे को कुछ मांगना पड़ेगा। तो ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु मेरी जो सोत माता है जिसने मुझको ताना मारा था कि राज गद्दी पर यदि तुमको बैठना है पिता की गोद में बैठना है तो तेरे को मेरे गर्भ में लाना चाहिए था, मेरे यहां जन्म लेना चाहिए था, उस माता के ताने को पाकर के मैंने आपकी भक्ति पाई, इसलिए प्रभु वो मेरी माँ इस विषय में मेरी गुरु है। तो मैं यही चाहता हूं कि उस ताने मारने वाली जो मेरी माँ है उसका कल्याण होना चाहिए और मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, यही मैं ऐसे चाहता हूं। आप कहते हो वरदान मांगने के लिए ख्याल करना चाहिए कि माँ क्या बर्ताव कर रही है और ध्रुव का कैसा उस कोटि का बर्ताव है, ये बात प्रह्लाद ने देखनी चाहिए। भगवान बार बार प्रह्लाद को कहते हैं कि बेटा मेरे अंग में विलीन हो गया और ये तेरे को बहुत तकलीफ पहुंचाई, इसलिए मेरे अपराध को तुम क्षमा कर। एकदम चकित हुआ, महाराज आप क्या कह रहे हो, आपका बना अपराध, आपका बना कभी अपराध हो सकता है? अच्छा ध्रुव तू कुछ मेरे से वरदान मांग ले, मेरे प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं, हाँ आप मुझको वरदान दे रहे, मैं वरदान के उद्देश्य से आपकी भक्ति करूं, वो भक्ति भक्ति नहीं, वो तो एक प्रकार से व्यापार है। बनिया जो होता है वो सौदा देता है रुपया लेता है, तो मैं बनिक नहीं हूं कि आपकी मैंने भक्ति की और इसके बदले में मैं आपसे कुछ वरदान ले लूं। बोला नहीं नहीं तू बनिया नहीं है तो मेरे संतोष के लिए कुछ तुम मांग लो, मेरे संतोष के लिए। महाराज आपको तो सदा संतोष ही है फिर भी आप मांगने के लिए कहते हो, तो मेरी धारणा में तो कोई भित्र में मेरे मांगने की इच्छा नहीं है, किंतु हो सके जब आप बार बार कहते हो कि तुम मांग मांग, तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी बात आप मुझको क्यों कहते, तो मेरे भित्र में कोई कामना अवश्य कोई छिपी हुई है, तो मैं यही आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे भित्र में कोई मांगने की इच्छा हो तो उसको आप नष्ट कर, मेरे कहीं मांगने की इच्छा हो तो उसको आप नष्ट कर। भगवान ने कहा बेटा तेरे कभी मांगने की इच्छा है ही नहीं, मैं तो केवल एक प्रकार से मेरे संतोष के लिए, मेरे सुख के लिए कि किसी अपने मुंह से फरमा दे रहे तो मैं किसी सुनना चाहता हूं। यदि आपकी यही इच्छा है कि सुनना ही चाहते हो तो अच्छा मैं आपको सुनाता हूं। आपकी भक्ति के मां जो बाधा डालता है उसकी कहीं अपने गति नहीं, उसको कहीं छोड़ नहीं। जो आपकी भक्ति के मां बाधा डालता है या बाधा मेरे पिता ने डाली, आपकी भक्ति के मां मेरे पिता ने बाधा डाली पर वो आप जब मेरे को खुश हो और मुझको बरदान देना चाहते हो तो मेरे पिता के अपराध को माफ करके उनका दिलवाओ। ये भक्तों का स्वाभाविक भाव होता है। भगवान ने कहा बेटा तू क्या कहता है, जिसके यहां तू जन्म दिया उसका कल्याण तो हो चुका। एक तो भगवान के हाथ से उसकी मृत्यु हुई, एक प्रह्लाद जैसा लड़का उसके पैदा हुआ तो उसके कल्याण में संजय संशय क्या था। बल्कि भगवान ने कहा कि बेटा आज के पहले की जो सात पीढ़ी पहला जो गुजर गई उनका उद्धार हो गया, और अब वर्तमान के बीच के मां संजय की तेरे पिता से लेकर के बेटा पोतों तक जो वर्तमान में सात पीढ़ी है उसका, और जो भविष्य में और तुम्हारे कुल में जो सात पीढ़ी होगी इस प्रकार से तुम्हारे 21 पीढ़ी का उद्धार है सो हो गया। क्या वो बड़ा उसको तीघा भाव था, ख्याल करना चाहिए कि प्रह्लाद के विषय के में ये बात भी आती है। ये जो मैंने प्रह्लाद की बात कही ये शास्त्रों की बात है, ध्रुव की बात मुझको शास्त्रों की नहीं मिली जो अंतिम बात मैंने कही। अब फिर मैं प्रह्लाद के विषय में आपको कहता हूं, पिता ने प्रह्लाद को लोभ दिया कि बेटा तू मेरी बात मान करके मेरे शत्रु की भक्ति छोड़, अरे विष्णु मेरा शत्रु है उसकी तुम भक्ति मत कर, मेरे से बढ़कर ईश्वर कौन है, मैं तो सबका मालिक हूं, तुम्ही लोगों पर मेरा शासन चलता है, मैं साक्षात ईश्वर हूं, इस वास्ते भक्ति करने के जो वैसे मैं हूं। तू भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ करके और मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो मैं तुम्हारे को राष्ट्र दूंगा, राजपद दूंगा, तू राजा होगा। बोला पिताजी ठीक है किंतु भगवान की भक्ति मेरे से छूट नहीं सकती, तो ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो इसका नतीजा क्या होगा कि एकदम मैं तुम्हारी कदर करवा दूंगा। पर आप चुप हो गए, संगमर को यह आज्ञा दी कि तुम संजाब जाकर के इसको रस्ते लाओ और नहीं माने तो मैं ऐसे पुत्र का जीवन नहीं चाहता, इसको तुम मार डालो। संगमर ने आकर के कहा कि तुम मान लो नहीं तो तुम मारे जाओ। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति तो हमारे से छूट नहीं सकती और आप क्या मनाना चाहते, बोले हम यही मनाना चाहते हैं। बोले ये तो हमारे बस की बात नहीं, जिनकी जो लगन लग गई लग गई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि क्रिया पैदा की और उसको हुक्म दिया कि तुम इसे प्रह्लाद को मार डालो, किंतु भक्तों की रक्षा सदा ही सुदर्शन चक्र करता आया है। उस समय के बीच के वहां सुदर्शन चक्र चला कि कृपा को एक उनसे मार करके गिरा दिया, उसको मार करके के फिर संगम मर्क को भी मार डाला। वे मारे गए तो उसके मरने के बाद में प्रह्लाद के चित्त के मां बड़ा खेद हुआ कि मेरे कारण से हमारे गुरु के पुत्र मरे, गुरु के पुत्र मरे पड़े हैं। प्रह्लाद ने हाथ में दिल लेकर के और कहा कि यदि गुरु पुत्रों के साथ के मां मेरा किंचित मात्र भी दोष नहीं है, मैं था और मैं है, ये बात यदि हमारी सत्य है तो तो उसके प्रभाव से गुरु के पुत्र जीवित हो गए। उसे बड़ी पुत्र जीवित हो उन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा कि हमने तो उनको मारने के लिए उपाय रचा और मारने का उपाय किया और इन्होंने हमारे को जिलाया। तो प्रहलाद का स्वभाव ऐसा था, माता कलादू समझो कि विष का प्याला लेकर के प्रहलाद के पास में आती है और आंखों में इसके आंसू आ गए। राजे कहा मैं क्या करूं, मैं तुम्हें पैदा किया है, मैं मां होकर के तेरे को विष कैसे खिलाऊं। तेरे पिता की आज्ञा है कि तेरे लड़के को तू विष पिला करके मार डाल। बेटा मैं मां हूं, इन्हें कठोर काम मेरे से नहीं होगा, तेरा पिता क्या वो मुझ को मार डाली, तुम मां से विष कैसे पिला जा सके। प्रहलाद ने कहा कि मां इस बात की तू चिंता मत कर, पिताजी की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम धर्म, मां के हाथ से विष का प्याला छीन करके थे प्रहलाद संग उसको पी जाते हैं और वो विष जो है सो अमृत बन जाता है। उस पर बहुत से अत्याचार हुए, झगड़ती हुई आग की ढेरी के नाम उसको डाल दिया गया जो आकाश तक उसकी लंबे जा रही है, उसको आग में बढ़ा दिया। चारों चोर समझो की आपने आग लगा दी और ऊंचे तक लग जा रही है, कोई परवाह नहीं। प्रहलाद वहां बैठे हुए हंस रहे हैं। पिताजी कहते हैं अरे प्रहलाद ये आग तेरे को कैसे नहीं जला रही है। अरे पिताजी ये आग जो है मुझको चलने के समान शीतल प्रतीत हो रही है। अभी बात देते थे तो कल का चित्र से एकदम सुंदर कौन होगा। आंखों के बीच में ये उपाय उन्होंने सोचा कि मैं खुद एक तलवार लेकर के तुमको मार डालूंगा और किसी भी प्रकार से तुम नहीं मरते हो किंतु मैं खुद तुम्हारे को मारूंगा। उन्होंने खुद ऐसा विचार कर करके नगी तलवार निकाल करके और मारने के वास्ते तलवार खींच करके बोला अब बोल तेरी रक्षा कौन कर सकता, अब बतला तेरा भगवान कौन है। मेरे पिताजी भगवान को सब जगह भगवान को सब जगह अब मैं पूछता हूं तुम्हारे को खंभे के बांध करके के एक प्रकार से अब मैं तुम्हारे को काट डालूंगा तलवार से। और एक प्रकार से पूजा क्या सब दिना खम्भा में भी भगवान बोलो खम्भे में भी भगवान सभी दिना भगवान है तो आज मैं तेरे को खम्भे से काट डालूंगा तो तेरा भगवान भी कर जाएगा और तुम भी कर जा मामला एकदम खत्म। भगवान ने सोचा कि भक्त के मुख से निकल गया कि खम्भे में भी भगवान तो भक्त का वचन सत्य हो। उसी वक्त के वहां खम्भा में से बड़ी भयंकर आवाज आई। उस वक्त में इतना बड़ा भयंकर विकराल रूप